सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। मुख्य विषय के तहत हम लोग अर्थशास्त्र के अधूरे प्रश्न को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। और दूसरी घटनाओं को क्या, इनफैक्ट घटना एक ही है, और वह घटना कौन सी है आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग जो यूक्रेन को लेकर के तनाव विश्व में बना हुआ है, बन गया है, उस पर कुछ न कुछ बातें करते आ रहे हैं। और अंततः कल रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर ही दिया। अटैक में क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहे हैं, किस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, दोस्तों आप लोगों ने न्यूज चैनल्स पर भी ये बातें सुनी होंगी और आज के अखबारों में ये बातें पढ़ी भी होंगी। अब आपके लिए जो चुनौती है, देखिए, वो ये है कि इस विषय में से ऐसे कौन कौन से तथ्य आप निकालें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी हो सके। इसके बारे में पहली बात तो यह है कि जो कहां से मिसाइल्स छोड़ी और किनको ध्वस्त किया और कितने मारे गए, इन सब बातों को आप भूल जाएं, इनका आपके एग्जामिनेशन से कम कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप थ्रिल के रूप में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आपको दो तीन बातें सबसे ज्यादा दिमाग में रखनी है। पहली बात तो यह है कि इस युद्ध का क्या प्रभाव वैश्विक व्यवस्था पर पड़ेगा। जब मैं वैश्विक व्यवस्था की बात कर रहा हूं तो विश्व की अर्थव्यवस्था और विश्व में शांति की स्थिति, ये दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जो युद्ध शुरू हो गया है ये आगे चल करके विश्व में अशांति का कारण बन जाए, क्योंकि देखिए अगर अशांति का कारण बनेगा तो रशिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है। हम लोग रशिया की ताकत के बारे में बात कर चुके हैं और आप देखिए कि कैसे युद्ध के छिड़ते ही पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कितने हाई होते चले गए। और आपको क्या ये बात आसान सी लगती है कि रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पर, यूक्रेन इसे स्वीकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों ने क्या कहा है कि वे अपनी सेना नहीं भेजेंगे। और सच बात यह है कि यूक्रेन अभी तक जो रशिया के सामने अड़ा हुआ था, किसकी ताकत पर, नाटो देशों के सह पर। नाटो देशों ने बकायदे उसे आश्वस्त किया था, बकायदे हथियार सप्लाई की थी, बल्कि चैनल में मैंने एक जो एक्सपर्ट थे, वे रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका एक स्टेटमेंट सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो नाटो देश हैं, जो यूरोप पश्चिम यूरोप के देश हैं, उनमें से कुछ देशों का हित सद गया, उन्होंने ढेर सारे हथियार बेच दिए यूक्रेन को, उसे कर्ज से लाद दिया, अब वो किनारे हो गए हैं। यह भी एक व्यू पॉइंट है, यह भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों, विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और विश्व की शांति व्यवस्था पर, जिसे आप लॉ एंड ऑर्डर भी कह सकते हैं, क्या असर पड़ेगा, आपको ये दो तथ्य विश्व के संदर्भ में देखने हैं। इस पर हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस पर भी हम लोग बातें कर चुके हैं। मैंने बहुत विस्तार के साथ इस पर बातें की हैं। डेफिनेटली इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखें, इन टॉपिक्स को अपने दिमाग में रखें, और फिर जब भी आप अखबार पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ेंगे, एक्सपर्ट्स के व्यूज सुनेंगे, तब अपने इन्हीं टॉपिक्स को, आप कह लीजिए सब टॉपिक्स को, बाकायदे मजबूत बनाते चले जाएं, अपडेट करते चले जाएं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जो स्थितियां हैं वो बदतर होने वाली हैं। हम लोग अभी कोरोना से निकले ही थे, हम लोग का मतलब पूरी दुनिया को आप ले लीजिए, और यह दूसरा एक तरह से संकट पूरी की पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। इस बीच में आपने देखा कि अमेरिका ने और भी ज्यादा प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है, जो पश्चिमी यूरोप के देश है वे भी प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे, लेकिन रशिया को इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है। डेफिनेटली उसके पास अपनी कोई ताकत होगी। लोग अपने अपने ढंग से इसे विश्लेषित कर रहे हैं। लोगों का, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि यह बहुत स्पष्ट हो गया है दुनिया के सामने कि अमेरिका कमजोर हो चुका है। जिस तरीके से अफगानिस्तान से उसने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी, वह उसके कमजोर होने का स्पष्ट प्रमाण है। इस बीच हम देख रहे हैं कि चाइना जो है एक विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया है। रशिया विश्व की बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है ही, और रशिया और चाइना में आपस में कितनी गहरी दोस्ती है आप सब जानते हैं। इस बीच में एक और भी घटना घटित हुई है दोस्तों, अगर न्यूज चैनल्स को आपने ध्यान से देखा हो कि कल ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान साहब, वे रशिया पहुंचे। उनका स्वागत किया गया, पुतिन साहब से मिले, बातचीत भी हुई, लेकिन पहुंचने के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट की बहुत आलोचना हो रही है और मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक स्टेटमेंट है, ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उन्होंने पहुंचते ही ये कहा कि मैं कुछ इस तरह की बात कही थी कि मैं बहुत ही उत्साहजनक एक समय पर यहां पहुंचा हूं, यानी कि रशिया ने अटैक कर दिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं ऐसे समय में यहां आया हूं। इसका प्रभाव डेफिनेटली पाकिस्तान की कूटनीति पर पड़ेगा, उसकी वैश्विक छवि पर भी पड़ेगा और वो छवि नकारात्मक ही होगी। इस बीच में एक जो छोटी सी घटना भारत में हुई है, खासकर जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, वह है कि हमारे यहां आपने देखा होगा बार बार न्यूज फ्लैश हो रही थी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, जो कहलाती CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, इसकी बैठक हुई। तो यहां आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि जो हमारी मंत्रिमंडल समितियां हैं वे क्या हैं। देखिए कैबिनेट है, कैबिनेट में सारे के सारे कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, आप जानते हैं, इन्हें ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। तो डिसीजन लेने की सुविधा की दृष्टि से कुछ कमेटीज बना दी गई हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, एक राजनीति से संबंधित कमेटी होती है जो राजनीतिक विषयों पर निर्णय लेती है, सबसे महत्वपूर्ण कमेटी मानी जाती है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ज्यादातर कमेटियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आर्थिक मामलों से संबंधित समिति होती है, खासकर आपने देखा होगा जब आर्थिक निर्णय लेने होते हैं तब ये उसमें दिखाया जाता है न्यूज में कि आर्थिक मामलों संबंधी समिति जो है वो उसकी बैठक हुई। इसके बाद नियुक्ति समिति होती है, खासकर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड एवब लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, नियुक्तियां होती हैं बड़े बड़े और भी जो नियुक्तियां होती हैं, उन नियुक्तियों के लिए जो अंतिम जो स्वीकृति होती है वो कैबिनेट कमेटी की ही होती है। संसदीय मामलों संबंधी समिति होती है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं सामान्यतः संसदीय मामलों के, वो जनरली गृह मंत्री होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ समितियां होती हैं। इसमें अभी जो बैठक हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वह है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। अब चूंकि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है तो सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, क्या किए जाएं इसके लिए। एक पॉइंट यहां आप विशेष रूप से नोट कर दीजिए, जिस तरह से प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आधार बना करके मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो कमेटीज हैं, कैबिनेट कमेटीज, इनका कोई उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान के तहत ये नहीं बनाई गई है ना, बाद में काम के सहजता के लिए, सरलता के लिए ये बनाई गई हैं। हाँ, इनके अपने बनाए जाने के कुछ नियम तैयार किए गए हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए और अच्छा होगा कि आप इससे संबंधित चैप्टर एक बार थोड़ा पढ़ भी ले। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। कल हम लोग जिस प्रश्न पर बात कर रहे थे, आइए आज उसे पूरा कर लेते हैं। प्रश्न आपको मालूम है, भारत में अंतिम उधारदाता। अब जब आप ये शब्द सुनते हैं अंतिम उधारदाता, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब मुझे धन की जरूरत है और मैं धन लोगों से मांगने जाता हूं, अपने दोस्तों से जाता हूं मांगने के लिए, बैंकों से मांगने के लिए जाता हूं, फलाने फलाने से मांगने के लिए जाता हूं, महाजन से मांगने के लिए जाता हूं, लेकिन मुझे कोई भी कर्ज नहीं दे रहा है। क्यों कर्ज नहीं दे रहा है? क्योंकि मेरी स्थिति खराब हो गई है। तो अंतिम उधारदाता कौन है? वो अंतिम व्यक्ति कौन है जो मुझे कर्ज दे सकता है, मतलब मेरा उद्धार करने के लिए? जैसे ईश्वर को कहते हैं ना, जब पेशेंट कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाता है तो डॉक्टर ये ना कह करके कि अब इनके बचने की गुंजाइश नहीं है, संभावना नहीं है, वो ये कह देते हैं कि अब तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें, मतलब अब ईश्वर ही अंतिम इनका रक्षक हो सकता है। तो इस तरह से ही ये अंतिम उधारदाता, ये उसकी विशेषता है। के रूप में केंद्रीय बैंक, जब वो केंद्रीय बैंक कह रहे हैं तो भारत का कौन सा है केंद्रीय बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। याद रखिए, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि हमारे यहां सेंट्रल बैंक भी है, तो उसे नहीं, सेंट्रल बैंक एक अलग नाउन है। जब सेंट्रल, यहां हम केंद्रीय बैंक कह रहे हैं तो ये स्पेसिफिक है केंद्रीय बैंक। दुनिया के हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है और हमारा केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो पूरा का पूरा प्रश्न पूछा गया है, यह बेसिकली रिजर्व बैंक के कार्यों पर आधारित है कि रिजर्व बैंक की क्या दायित्व है, क्या उसके अधिकार हैं। और इसके जरिए वो जानना चाह रहे एग्जामिनर कि रिजर्व बैंक के बारे में आपकी दृष्टि स्पष्ट है या नहीं है। यदि आप सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी चैप्टर में आपको मिल सकता है, या आपको अपनी समझ से हल करना पड़ेगा। ये इसकी चुनौती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, देखिए, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कभी सोचते हैं कि ये शिपयार्ड है, इसके ये इतना रुपया लेकर के भाग गया, और कहीं विजय माल्या लेके भाग गए, कोई नीरव मोदी लेकर के भाग गया, उसके पास इतना पैसा है और वो नहीं, वो वापस कर रहा है। तो उसमें कभी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम पढ़ने को मिला क्या? दूसरे दूसरे बैंकों के आप नाम पढ़ रहे होंगे, है ना, उसमें यहां तक कि कोऑपरेटिव बैंक के भी नाम आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम नहीं मिलेगा। इसका साफ मतलब है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सीधे ऋण देने का काम लोगों को नहीं करता, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो उद्योग हो, कोई भी हो। इसीलिए तो बैंक बनाए गए, जो दूसरे बैंक हैं वो उनका काम है। तो सीधी सी बात है कि जो पहला कूट है वो सही हो ही नहीं सकता है। रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, वो लेन देन नहीं करता है। इतनी जानकारी शायद आपको होगी व्यावहारिक स्तर पर। चलिए, अगर आपने पढ़ करके नहीं ये निष्कर्ष निकाला है, जो व्यावहारिक स्तर पर भी इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ लेंगे। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। अब ये क्या है? बैंकों के सामने एक टेम्परेरी इमरजेंसी आ गई है, संकट आ गई है, वो कुछ मामलों में प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्परेरी क्राइसिस आ गया है, उनके पास क्राइसिस पैदा हो गया है। तो दोस्तों, जब आप SLR और ये सब के बारे में पढ़ते हैं, मौद्रिक नीतियों के बारे में पढ़ते हैं कि बैंक इतना धन उनके पास अपने पास रख लेते हैं, रिजर्व बैंक इतना कहते हैं कि आप अपने पास रखे रहो, कैश में रखे रहो, लिक्विड फॉर्म में रखे रहो, गोल्ड में रखे रहो, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखे रहो, तो ये सब क्यों कहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसलिए कहती है ना, दोनों है, एक तो जो हमारे उसके जो कस्टमर हैं उनकी रक्षा हो सके, और साथ ही साथ जब बैंकों के पास इस तरह के कभी क्राइसिस आ जाए तो उसके आधार पर वो उनकी मदद कर सके। और केंद्रीय बैंक इसका नाम है, तो भैया ये कोई किसी उद्योग के सामने एक क्राइसिस नहीं आया, ये बैंकों के सामने क्राइसिस आया है। और अगर बैंकों का उद्धार रिजर्व बैंक ही नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? और अगर बैंक फेल हो गए तो देश का उद्धार कौन करेगा? तो सीधी सी बात है कि नहीं, ये काम तो रिजर्व बैंक करेगा ही, और रिजर्व बैंक के बहुत ही महत्वपूर्ण कामों में से एक यह काम भी है। अब आप ध्यान से पढ़िएगा रिजर्व बैंक की ड्यूटीज एंड पावर्स, तो शायद आपको ये बात पकड़ में आ जाए। स्पष्ट तौर पर नहीं, लेकिन ध्यान देकर के आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ में बात आ जाएगी। फिर है बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। नहीं, सरकारों को ऋण नहीं देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकारों को ऋण नहीं देती है। जब सरकारों को घाटा होता है तो वो अलग अलग रूप में फिर वो अपने घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेती हैं। अभी केंद्र सरकार ने घाटे का बजट दिया है, हर साल ही देती है, राज्य सरकार भी घाटे का बजट देती है, तो आप कहां कहां से आप देखिए कि वो ऋण लेते हैं, ये भी रिजर्व बैंक का काम नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपका जो कूट है, जो उत्तर है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। इसे मैं कठिन प्रश्नों की श्रेणी में नहीं रख रहा हूं, ये बहुत ही सरल प्रश्नों की श्रेणी में है, जो बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से एक है। तो दोस्तों, अब मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम है दुष्यंत कुमार और महेंद्र चावड़ा, जोधपुर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।